बाबा की मुरली में 5 तारीख को किसको क्या अच्छा लगा याद करो जरा, जगते हुए दीपक तो हैं, फिर आगे किस किस को संकल्प चला के बाबा दिवाली की मुरली क्यों चला रहा है? चला चला है एक चीज और जिसको हम भी नहीं जानते थे, बाबा की मुरली के बाद पता चला कि उस दिन भी देव दीपावली थी भारत में, और जगह का मुझे पता नहीं पर नॉर्थ इंडिया में गंगा में बहुत मनाया जा रहा था, दीप बहाए जा रहे थे गंगा में, तो हजारों दीप जगमगा रहे थे, वो सेन बाबा ऊपर से देखता है देव दीपावली, तो हमें भी समझ में आया होनी तो दो ही चाहिए, एक संगम युग की जिसमें दीपराज से दीपक जलते हैं, दूसरी सतयुग की जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं, उसको ही देव दीपावली के रूप में भारत में मनाया जाता है। मैंने पहली बार सुना जीवन में, पर नॉर्थ इंडिया में बहुत मनाई जा रही थी, तो मेरे को किसी ने फोन करके पूछा कि बाबा की दीपावली पे मुरली अनायास ही चली या कुछ रहस्य भी है? मैंने कहा भाई बाबा मालिक है, वो जिस पे चाहे चलाए, हम थोड़ा ही उसे राय देंगे। तब उसने बताया कि नहीं, देव दीपावली थी इसलिए बाबा देवताओं को याद कर रहा था, भक्त तुम्हें याद कर रहे हैं। उस दिवाली में भक्तों को याद करने की बात नहीं होती, तो ये हमारे देव स्वरूप की यादगार थी। दो मुख्य पॉइंट उस मुरली में, वॉल्यूम बढ़ा के रखना भाई थोड़ा, एक थी तुम्हारी ज्योति कितनी जगे, याद करो माताएं याद करो, भूलो नहीं इतनी जल्दी, बोलो अब तो सुना भी दिया। उसका भी जल जाए जग जाए ना दे, सुना सभी ने, माताओं ने सुना, कोई भी सामने आए उसकी भी आत्म ज्योति जग जाए, दीप जग जाए, और उसे तुम्हारा साधारण स्वरूप न दिखाई दे, यही बात दूसरी पॉइंट थी। जल्दी वो दिन भी आएगा, क्या देखेंगे तुम में सब, तुम्हारा दिव्य स्वरूप साधारण स्वरूप लोप रहेगा। तो आज हम पहले चर्चा इसी पर करते हैं, हमारी ज्योति बहुत अच्छी कैसे जगे। हाँ दूसरी लाइन बना सकती है माताएं, खाली है, बोलो आप सबको उत्तर देना है। हमें अपनी ज्योति इतनी जगानी है कि हमारे प्रकाश से संसार का अंधकार भी मिट जाए, और मिटेगा। अंधकार कौन सा है दुनिया में, और कौन सा है, विकारों का, विकारों का भी अंधकार है और अज्ञान का भी अंधकार है। हमारी ज्योति बहुत ऊंची उठ जाएगी तो लोग हमारी हर बात को मान्यता दे देंगे, हमें लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं, गीता का भगवान कौन है, जो हम कहेंगे वही सत्य है। तो ज्ञान अंधकार भी मिटेगा, विकारों का अंधकार भी मिटेगा। कैसे बढ़ाएंगे हम अपनी ज्योति को, अब उत्तर देंगे। एक है ग्रंथ कौन सा है, ज्ञान का घृत। ये घृत डालते रहेंगे, ज्योति बढ़ती जाएगी। कब पड़ता है ये घृत? मुरली के समय विशेष। मुरली सुनना एक बात, लेकिन ऐसा लगे कि घृत पड़ गया। जग गए हम, रोज की मुरली ने हमें जगा दिया। ये फीलिंग किस किस में सो जाती है आत्मा? मुरली में सो जाती है। किस किस में सो जाती है आत्मा? देखो कभी उदासी आ जाए, सो जाते हैं। विस्मृति की नींद सबसे गहरी नींद है, खराब भी नींद है, आत्मा को कमजोर कर देती है। उस नींद में तो बहुत सोए हुए हैं ब्राह्मण भी। और कौन सी नींद ब्राह्मणों के लिए? अब व्यर्थ चिंतन भी नींद है, क्योंकि हम अपने श्रेष्ठ स्वमान से नीचे रहते हैं। और कौन सी नींद है? लक्ष्य की विस्मृति भी नींद है। तो हमें स्वयं को ज्ञान अमृत से रोज घी डाल डाल के लो बढ़ाते चलना है। क्लियर है ना? केवल सुनना नहीं, जग जाएं हम। दूसरी, हमारी आत्म ज्योति की चमक बढ़ती है योग बल से। वो तो इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें भी पहला शरीरीपन, जो जितना देह से न्यारे हैं उनकी आत्म ज्योति उतनी ही तीव्र जगती है। आत्मिक दृष्टि और आत्मिक स्थिति। बाबा को क्या दिख रहे थे हम सब? नहीं, चेहरा ही कुछ दिख रहा था, सारा चेहरा ही कैसा हो गया था, सब ज्योति बन गया था। कोई सोचता होगा कि बाबा ऐसे ही चढ़ाता रहता है हमको। ऐसे ही नहीं चढ़ाता, हमें पता रहना चाहिए ना, तो लाइट होती। हमें पता रहना चाहिए भगवान जो बोलता है वो परम सत्य है। हम उसे नहीं समझते, वो हमारी गलती। जैसे बहुत सोच रहे थे, हमारे आगे पीछे वाले भी कह रहे थे, बाबा को दिवाली कहाँ से याद आ गई आज? तो सोचते हैं बाबा भ्रमित हो गया है कुछ। भ्रमित खुद है, सोचते हैं बाबा को कुछ हो गया है। तो जो बाबा बोलता है वो परम सत्य है, क्योंकि वो ऊपर से सब कुछ देखता है। नीचे वालों की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, ऊपर बेहद है सब कुछ। सब कुछ दिखाई देता है, हमारे अंदर का भी दिखाई देता है और बाहर क्या हो रहा है वो भी दिखता है। आत्मा की ज्योति जब बहुत जग जाती है तो उसका प्रकाश कहाँ जाता है? चेहरे पर। उसका प्रकाश चेहरे पर बहुत आ जाता है। तो बाबा वो सब देख रहा था कि कई आत्माओं की आत्मा का प्रकाश चेहरों पर भी तेजस्वी रूप से चमक रहा है। तो हम सब अपने को क्या समझेंगे योग करते हुए? आत्मा के साथ कुछ जोड़ो, ज्योति तो चिड़ियाओं की आत्मा भी है, आपकी आत्मा बहुत तेजस्वी, अति प्रकाशमान। याद करो बाबा की मुरली। बाबा ने कहा जब तुम परमधाम में हो, इस मुरली में नहीं दूसरी मुरलियों में, जब तुम परमधाम में हो तो तुम्हारी ज्योति और आत्माओं की ज्योति से बहुत ज्यादा है। शिव बाबा की ज्योति सबसे ज्यादा, फिर ज्यादा ज्योति है किनकी? अष्ट रत्नों की, और फिर विजय रत्नों की। ये क्रम है। तो हम सब की, ब्राह्मणों की ज्योति, बाबा ने कहा ना, बुझी हुई तो नहीं है ना किसी की, सब जग रहे हैं दीपक। थोड़े भी जग रहे हो तो जगा हुआ और बुझा हुआ कितना अंतर है। जगे हुए दीपकों का प्रकाश, उनकी जगमग, आपने देखा हो कभी किसी शहर की जगमग जब रात को लाइट जलती है, देखा है? छोटे लाल भाई ने देखा होगा, जब प्लेन से जाते हैं तो नीचे के शहर आकर्षित करते हैं। हाँ, अब रोड भी दिखता है, और भी जब बरसात होती है ना, तब अगर देखें तो, क्योंकि धूल नहीं रहती आकाश में, तो वो बहुत चमकती है, आकर्षित करती है। तो जब ये स्थूल प्रकाश भी मनुष्य को आकर्षित करता है, तो आत्मा का प्रकाश इससे हजारों गुना अधिक आकर्षक है। हमें जानना चाहिए हम बहुत तेजस्वी आत्माएं हैं। भाई माताओं को गाइड करो, पीछे वाले अरे इधर भेजो ना, उमा बहन तुम ही कर दो, उमा बहन को ये काम दे देते, सबको इधर बैठाओ। हाँ, लेट आने वाली माताओं को भी जगह तो चाहिए ना, अभी भी आएंगे, 9:15 बजे तक भी आएंगे, अंतिम आहुति डालने। हाँ, आप यहाँ से लाइन बना लो, आ जाओ यहीं आ जाओ। हाँ, माताओं को उठना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल काम होता है, थोड़ा पतली पतली माताएं उठ जाओ। हाँ, ते बहुत खुश हुआ भाई, भारी वालों को उठना मुश्किल होता है ना, इसलिए मैंने कहा। हमारी ज्योति, हमारी लो बढ़ती जाती है, तीसरा पवित्रता के आधार से। ये तीन मुख्य चीज हैं हमारे, और एक चौथा भी है, पुण्य कर्मों के आधार से। पाप कर्म आत्मा की ज्योति को मलिन कर देते हैं। किसी भी तरह की यह पवित्रता, चाहे वो व्यर्थ संकल्पों की हो, आत्मा की ज्योति को धूमिल कर देती है। और आत्मा न सोच के देहभान हो, तो देहभान में तो आत्मा की ज्योति जैसे छुप गई ना, वो कैसे हो गया? मान लो हमने दीपक तो जलाया हो, लेकिन उसके चारों ओर कवर कर दिया हो, बॉर्डर बना दिया हो, तो किसी को लाइट दिखेगी नहीं, बस लाइट है ऐसा पता चलेगा। तो जो जितने ज्यादा देहभान में है, उनकी लाइट तो अंदर ही छुपी रहती है। और बाबा की याद, पावरफुल याद, जिसके लिए आज वरदान में एक बहुत सुंदर शब्द था, एकाग्रता। जिसकी जितनी अधिक एकाग्रता है, उसकी लो भी एकाग्र है, हिलती डुलती नहीं, फ्लक्चुएट नहीं करती, उसकी लो भी एकाग्र है पूरी तरह। तो सभी ध्यान देंगे, हमें अपनी ज्योति को बढ़ाते चलना है, और ऐसी स्थिति तक पहुंचना है। कहने से तो काम नहीं चलेगा, कोई हमारे सामने आए और उसकी भी बोलो, उसकी भी ज्योति जग जाए, अर्थात उसको भी याद आ जाए मैं आत्मा हूँ, पहली स्मृति। बाबा ये बात बहुत पहले से कहते आते थे कि अंत में ऐसा समय आएगा, तुम्हारे मस्तक क्या बन जाएंगे? टीवी की स्क्रीन। तब हम लोगों ने टीवी देखी भी नहीं थी, हमने तो देखी थी क्योंकि पढ़ी थी टीवी की, जो फिजिक्स में आती है, लेकिन भारत में टीवी ज्यादा नहीं थी, केवल बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में थी। तो बाबा ने कहा तुम्हारे मस्तक टीवी स्क्रीन बन जाएंगे, जिसमें लोगों को क्या क्या दिखाई देगा? नहीं, कुछ और दिखाई देगा, अपना। उन्हें अपना सब कुछ दिखाई देगा। उनका भाग्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। तो वो चमत्कारिक समय अब आने वाला है। कब आएगा, कितने साल? अभी अभी। ये सोचने की बात है कि भगवान स्वयं ये कहता आया अगली दिवाली नहीं आएगी। सुना है ना? चलो बाद में कहा, थोड़ा सा समय बचा। आज की मुरली में भी क्या था, इशारा था जल्दी संपन्न बनो, समय कम है। क्यों कहता है ये बाबा? और कुछ बताओ। शरीर का भरोसा हो भी तो एक चीज जाननी है हमें, कि ये स्थिति जो बाबा चाहता है कि तुम दृष्टि दो और उन्हें साक्षात्कार होने लगे, तुम्हारे चेहरों को वो देखें और तुम्हारा साधारण स्वरूप समाप्त होकर तुम्हारा दिव्य स्वरूप दिखाई दे, ऐसा तुम्हारा दृष्टि का प्रभाव हो कि सामने खड़े होने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाएं, तुम्हारे एक एक शब्द में ऐसी शक्ति हो कि तुम्हारे बोल दूसरों के विघ्न हरने लगे। ये स्थिति है ना हमारी? ये स्थिति 10-20 साल की साधना से भी नहीं आती। वो साधक जो 8-10 घंटे रोज योग करे, उसको भी बहुत साल चाहिए, और जो करते ही नहीं, उन्हें जरूरत नहीं समय की। उनका तो खैर भाग्य छोटा है, पर जो मुख्य आत्माएं हैं इस सृष्टि की, जिन पर भगवान की नजर है, जिसके द्वारा उसे संसार का कल्याण कराना है, वो भी जो बहुत अच्छे योगी हैं, 40 साल में भी इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि ये मंजिल ही बहुत बड़ी है। 100 से 5 पर उतर आए हम, 100 डिग्री पर थे, 5 पर आ गए। उसको बढ़ाना बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अगर बाबा ये कह दे शुरू में ही कि 50 साल बाकी हैं, तो क्या करते सब लोग? 40 साल के बाद आएंगे, तब तक आनंद मना लो दुनिया में। और 40 साल का वो आनंद उन्हें इतना पतित कर देता कि वो 10 साल में उनका योग न लगता। योग लगाना हर एक के वश का नहीं होता, सब आप जानते हैं अनुभवों से। योगी बनना सबके वश की बात नहीं है, बुद्धि को एकाग्र करना ये भी सबसे नहीं होता। अनेक इच्छाएं तृष्णाएं मनुष्य के मन को भटकाती हैं। देखो, मैं हमेशा अपने लिए एक साक्षी भाव रखता हूँ, आप भी रख सकते हैं। किसी भी क्लास में 5 तरह के स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो हमारी क्लास हो, चाहे हमारी टीचर्स हो, चाहे मधुबन निवासी हो, ज्ञान सरोवर निवासी हो, शांति वन निवासी हो, सेंटर में रहने वाले भाई बहने हो, सेंटर की क्लास हो, 5 तरह के स्टूडेंट होते हैं लौकिक में भी। पहला टॉप करने वाले, 2-3 कह लो बस, ज्यादा नहीं। टॉप तो एक ही करता है, लेकिन बराबर होते हैं ना 2-4 पहले। यूनिवर्सिटी में भी 10 को निकाल दिया जाता है, 10 टॉप, 10 जो मेरिट में हैं। तो 2 टॉप वाले, 50 में से 15 फर्स्ट क्लास, उनमें कुछ की डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास, बाकी 15 सेकंड क्लास, 30 बाकी 15 थर्ड क्लास, और पीछे के 5 फेलियर। ये 5 कैटेगरी सब जगह चलेगी, इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये एक नियम है इस सृष्टि का, किसी भी स्टडी में, किसी भी एजुकेशन में ऐसे 5 तरह के लोग मिलेंगे ही। इवन मेडिकल में भी, आईआईटी में भी, माताएं नहीं जानती होगी इनको, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिसमें बहुत होशियार विद्यार्थी जाते हैं, उसमें भी फेल होने वाले मिल जाते हैं। मेरे को फोन आते रहते हैं ना, आज ही एक लड़की का फोन, मेडिकल में पढ़ती है बॉम्बे में, मैं बहुत होशियार स्टूडेंट, लेकिन अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मन में व्यर्थ का तूफान बहुत चलता है। आज आप समीप बैठे हैं, मैं आप सबको क्लियर ये बात बताता हूँ, मैं क्लासेज में भी कह रहा हूँ, अनुभवों से कह रहा हूँ, हजारों लोगों के अनुभव, कि जो कुछ हमारे अंदर विकर्म और विकार हैं, बात हम सब की नहीं, सारे संसार की, उनके इमर्ज होने का समय आ गया है, चल रहा है, प्रारंभ हुआ है। इसलिए बहुतों को व्यर्थ संकल्पों के तूफान चल रहे हैं और चलेंगे। स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत हो रहा है, युवकों के साथ बहुत हो रहा। आप अपने बच्चों को ध्यान से देखें, वो आपको बहुत खुश नजर नहीं आएंगे, उनमें उदासी है। अच्छे बच्चों में मैं कह रहा हूँ, जो बुरे संग में गए उनकी बात नहीं, क्योंकि वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, अंदर से व्यर्थ, जो हो सकता है हजारों साल का जमा हो, वो निकलना प्रारंभ हुआ है। हम सब को भी इस बात का ध्यान देना है, सब कुछ निकल के समाप्त होगा, लेकिन निकलने में बड़ा कष्ट देगा। उस कष्ट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, कष्ट ना हो, सहज पूरा हो जाए। देखो बीमारियां भी कैसी आ रही हैं, फटाफट, कैंसर तो घर घर में पहुंचने की तैयारी में है, आपको पता नहीं होगा, रिसर्च हो गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, कैंसर कुछ ही साल में घर घर में पहुंच जाएगा। तो क्या करना होगा और कुछ बताओ, ज्वालामुखी बनना पड़ेगा, और बताओ, एक तो अच्छा चिंतन, मैं योग के साथ एक दूसरी चीज पे आपको ध्यान दिलाऊंगा, ज्ञान का बल। ज्ञान की सुंदर बातें अपने पास नोट करके रखो, ये नहीं मैं आत्मा हूं, ये ड्रामा है, ये ज्ञान की नहीं, कम से कम 16 पावरफुल पॉइंट्स जो आपको हर इफेक्ट से मुक्त रखे। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी लाइन आई लिखी, ये ना सोचो तुम्हारे साथ कितने लोग गलत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये सोचो तुम्हें साथ देने वाला कौन है। तो ये एक लाइन मनुष्य को एकदम निश्चिंत कर देती है, हजार लोग हमें तंग कर रहे हों, पर साथ देने वाला वो एक ही सबके बराबर है ना, उनसे बड़ा। ऐसी 16 पॉइंट लिख लें हर एक अपने पास, खुद निकालेंगे मुरलियों से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अव्यक्त मुरलियों की गहन स्टडी करो। एक भाई ने अभी 4-5 दिन पहले मुझे सुनाया, हाँ एक माता थी विदेश से आई थी, कहा मैंने 69 से सभी अव्यक्त मूल्यों की स्टडी प्रारंभ की पहले दिन से ही, और कहा मुझे पता चला ये कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है, कहा मेरा तो दिमाग खुलता रहता है। मैं भी यही कहता हूं लोगों को, योग से भी कहीं कहीं बड़ा आनंद ज्ञान की बातों से मिलेगा, जो हमारे चित्त को बहुत एकाग्र करेंगी। इसलिए सभी, एक तो है आप मुरली नोट करते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं मुरलियों में कभी कभी बहुत सुंदर बातें आती हैं, उसे भी नोट किया करें। अलग छोटी डायरी बना लो अपनी, मिलती है ना छोटी सी तारों वाली, एक पेज पे एक पॉइंट लिखो, 25 लिख लो, जितने उस पे पेज है उतने पॉइंट्स लिख दो, ऐसी पॉइंट जिनको पढ़ते ही दिमाग खुल जाए, नींद से जग जाए हम, अगर सवेरे याद आ जाए तो सारी सुस्ती भाग जाए, माया के तूफान चल रहे हो वो एक बात याद आ जाए तो हम जग जाए, पावरफुल हो जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मुझे याद आ गई एक बात, आज मुझे याद आ रही थी वो, मैं हंसी की बात है मेरी अपनी, मैं अकेला घूम रहा था, कोई नहीं था वहां, मैं सोचा अब चोर आ जाए तो, वहां कोई नहीं आसपास, लेकिन तुरंत मुझे एक बात याद आई, बहुत ध्यान से सुन रहा है ये, खुश होता है, यही हमारा मेडिटेशन हॉल जब बन रहा था तो इसमें टीन की छत डाली थी, फर्श अभी नहीं पड़ा था, दीवारों पे सीमेंट हुआ था, तो अव्यक्त बाबा को बुलाया, वहीं पार्टी बहुत थी, 500 थी, तो नीचे चादरें डाल दी, रोड़ी भी थी वो चुभती थी, उसी पे बैठे और भगवान आया, देखो भगवान, तेज हवा और बरसात हो रही थी, तो वो जो टीन था ना, चार चार इंच ऊपर उठ के फिर गिरता था, भगवान अंदर बैठा है, और लाइट आती थी, बिजली चमकती थी ना, लाइट अंदर आती थी, बिजली चली जाती थी एक दो बार, तब हमारे पास जनरेटर थे। बाबा ने क्या कहा, वो बात मुझे बहुत याद रहती है, कि अगर तुम सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड रहो तो अगर प्रकृति विनाश करती आ रही हो तो तुमसे एक फुट पर आकर ही रुक जाएगी, सम्मान करेगी तुम्हारा, सुरक्षा करेगी। तो जब मुझे संकल्प है ना चोर आ जाए तो क्या हो, तो मैं सोचा अगर प्रकृति हमारा सम्मान करेगी तो चोर तो पैरों में मस्तक झुका देंगे बेचारे, होगा नहीं, हम कंबाइन। एक पॉइंट है, मैंने पॉइंट सुनाई, ऐसी पॉइंट लिखें, तो विनाश काल में प्रकृति जब प्रकोप करेगी, कुपित हो जाएगी ना बहुत, एकदम तोड़ फोड़ लगेगा, सब कुछ नष्ट होने जा रहा है, जो लोग जिंदे होंगे वो देखकर ऐसा समझेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, धरती नष्ट हो जाएगी, ऐसा आभास होगा, तब ये बात याद होगी और हम योग युक्त होंगे, निश्चिंत होकर बैठे रहेंगे, प्रकृति हमें नुकसान देगी ही नहीं, ठीक है। तो ज्ञान का बल सभी को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। देखो समस्याओं में योग तो विचलित हो जाता है, लेकिन जब ज्ञान का बल हमारे पास रहेगा, उसे हम पढ़ते रहेंगे, तो हम अनेक चीजों में स्थिर रहेंगे, और इसकी बहुत जरूरत होगी, और हमारी स्थिति अगर स्थिर है सब कुछ ठीक, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थिति समाप्त। तो मैं फिर वहीं आ जाऊं, सब कुछ इमर्ज होने का समय आ गया है, तो एक चीज की धारणा पर हमें बहुत ध्यान देना है, एक धारणा है, गुण बोलो कौन सा, मैं कहूंगा वो सबसे अच्छा गुण है, बताओ अपने अपने अच्छे गुण, सरलता, सरलता, सारे ही अच्छे हैं, गुण कौन सा खराब है, गुण माना ही बहुत अच्छे। सरलता, देखो क्या होता है आजकल, बहुत फोन ऐसे आते हैं, माताओं को अनेक समस्याएं, बच्चा सीरियस बीमार, ऐसी बीमारी उसका इलाज संभव नहीं है, दूसरे बच्चे का ऐसा खराब हाल, तो माताओं का हाल तो बिगड़ जाएगा ना। ऐसे में यदि सरल चित्त होंगे तो क्या फायदा होगा, अपनी स्थिति को संभाल लेंगे, और स्थिति संभालने से कई चीजें ठीक हो जाएंगी, ये बहुत अच्छी तरह याद रखेंगे। स्थिति ठीक, सब कुछ ठीक, क्योंकि परिस्थिति बड़ी होती नहीं, मनुष्य माताओं से बुलवाएंगे हम, मनुष्य कैसे सोच सोच कर उसे बड़ा कर देता है, बात कभी भी उतनी बड़ी नहीं होती, हमें सोचने की बहुत आदत है। इसलिए एक बड़ी धारणा सभी को मैं याद दिला देता हूँ आज, जो आगे चलकर आप सबको बहुत काम आएगी, इंग्लिश शब्द है नो इफेक्ट, समझा, किसी चीज का बुरा असर नहीं। एक बहन आई आज मेरे पास, कहा मेरी बड़ी बहन का पति गहरे डिप्रेशन में चला गया है, क्या करूं, बहुत बढ़ रहा आजकल ये। मैंने पूछा हुआ क्या, कोई किसी की डेथ हो गई, कुछ उसको सदमा कहते हैं ना हिंदी में, शोक लग गया, क्या हुआ, कहा नहीं, बेचारी ने फट से बता दिया, मेरी जो बहन है कर्कस है, सर्कस और कर्कस जानते हैं क्या होता है, कर्कस बहुत कटु वचन बोलती है, पति बहुत जेंटिल, बेचारा सहनशील, सुनता रहा और आके डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा अब क्या होगा, अब तुम्हारी बहन आयु बड़ी नहीं है, बूढ़े नहीं, 35 साल के ही। मैंने कहा अब क्या होगा उसका, अब उसको पता चला कर्कश स्थिति कैसी होती। अगर ये स्थिति हम बनाए कहीं कहीं, इसलिए मनोविज्ञान क्या कहता है कि जो सहनशील लोग हैं वो पेशेंट बनेंगे इधर के, इसलिए बोल दो, लड़ लो, गुस्सा कर दो, हल्के हो जाओगे। इन बाबा अलग कहता है, बाबा ये नहीं कहता कि गुस्से को दबाओ, बाबा क्या कहता है, इसे पूरी तरह शांति में बदल दो, ये तुम्हारी शक्ति बन जाए, तो तुम्हें सहन करना माना अपने को दबाना ना लगे, सहन आराम से सरलता से हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे, आराम से सहन हो रहा है। दुनिया में ये बहुत होगा, जो ज्यादा घुट रहे हैं ना वो मानसिक रोगी बन जाने वाले हैं, क्योंकि उनका ब्रेन अब उस चीज को समाएगा नहीं। तो बहुत ध्यान देना है इस बात पर, नो इफेक्ट। बहुत माताओं ने समझा नहीं ये इंग्लिश का शब्द, इसका अर्थ है किसी भी चीज का बुरा प्रभाव दिमाग पर ना आए। बहुत चीजों को मुस्कुरा के खत्म कर देना चाहिए, बहुत चीजों को सरलता से खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो आप स्टेशन जा रहे हो, जल्दी हो, ट्रेन का पता हो 5 मिनट रह गए, 2 मिनट में पहुंचना है, रास्ते में कोई आपको गाली देने लगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, चलो चलो और दे लो 2-4 आगे बढ़े, होगा या नहीं। जब मनुष्य को अपनी मंजिल का ख्याल रहता है तो ये सब बातें असर नहीं करती। इसलिए जीवन के लिए बहुत जरूरी है हम अपने लक्ष्य को इतना महान बना दें, संग लिखा हुआ ना स्लोगन, व्यर्थ सुनने के लिए, उन पे ध्यान देने के लिए समय ही न मिले। लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें बहुत तीव्रता से, तो सभी इस चीज पे ध्यान देंगे। और एक तीसरी धारणा भी इसमें है, जो बहुत खुश रहेंगे उनके ये हिसाब किताब जल्दी पूरे हो जाएंगे, और जो खुश नहीं रहते, कईयों की आदत है, सवेरे एक व्यक्ति ने कुछ कह दिया, सारा दिन खुशी गई, अगले दिन दूसरे ने कह दिया, फिर गई, तीसरे दिन तीसरे ने कह दिया, और इस तरह खुशी उनसे गायब। हमें ऐसा अपने को नाजुक नहीं बनाना है। कौन रह सकते हैं सदा खुश, बोलो? जो बहुत हल्के हैं, जो ज्ञान चिंतन में हैं, जिनकी कामनाएं कम हैं, जो इच्छाओं के गुलाम नहीं हैं, जो स्वमान में है। अब मैं यहीं आ रहा था तो बाबा ने जो कहा, तुम्हारा दिव्य स्वरूप दिखाई दे, और साथ में एक अच्छी बात भी कही कि किसी किसी का दिखता है, तो हमारा साधारण स्वरूप लोप हो जाए और हमारा दिव्य स्वरूप दिखाई दे। अब इसकी हम प्रैक्टिस निकालने और वो करेंगे, सब सेवा में है ना, यहाँ करना है सबको। हमारा ये साधारण स्वरूप न दिखाई दे, माताएं चलती फिरती संतोषी माँ दिखाई दे, अष्टभुजाधारी दिखाई दे, और भाई क्या हनुमान दिखाई दे, पूंछ नहीं दिखेगी, गदा तो दिखेगी, बंदर का मुख नहीं दिखेगा, मुख हमारा ही दिखेगा, कैसे होगा ये, बोलो कैसे होगा? माताएं बताएं, आप चलते फिरते दूसरों को दुर्गा दिखाई दें, कौन कौन चाहेंगी ऐसा? अच्छा, पांच सात माताएं हैं, बाकी क्या चाहेंगे? हम ऐसे ही ठीक है, ऐसे काली, सुशील कह रहा काली दिखाई दूं, कौन दिखना चाहेंगी? महाकाली, सब भाग जाए, महाकाली भी तो देवी है ना, वो खतरनाक नहीं है, वो तो उसका सिंबल दिखाया है, महाकाली कोई खतरनाक नहीं, ये तो विकराल रूप है, विकारों पर, मनुष्यों पे नहीं। जिसने जिस स्वरूप का लंबा अभ्यास किया होगा वो उनका रूप दिखाई देगा। किसने किया है, मैं तो महावीर हूँ, तो उनसे महावीर के भक्तों को वो महावीर दिखाई देंगे, सबको नहीं, जो उनके भक्त हैं। आपने अभ्यास किया मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो आपका रूप कौन सा दिखाई देगा? कौन सा? गणेश का दिखाई देगा। आपने अभ्यास किया मैं इष्ट देवी हूँ, मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अष्ट शक्तियों से भरपूर हूँ, तो आपको अष्ट भुजाएं दिखाई देंगी, भाइयों की भी दिखाई देंगे, जिन्होंने बहुत अभ्यास कर लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वो दुर्गा स्वरूप में शेर पर सवार दिखाई देंगे। और दूसरा अभ्यास, ये अपना अपना अभ्यास सुन लेना सभी, और दूसरा फरिश्ते का अभ्यास करने वाले फरिश्ते दिखाई देंगे, तीसरा अपने देव स्वरूप का, वो बहुत जरूरी अभ्यास है, भविष्य का नशा हमें होता चले, उस स्वरूप को सामने लाया करें, अपने भविष्य स्वरूप को सामने देखें और अपने को संकल्प दें, मैं ये हूँ ये नहीं। बहुत डिवाइन स्वरूप अपना सामने देखेंगे तो सभी ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ठीक है, करेंगे ना प्रैक्टिस, सबको करनी है कल से, और अपनी आत्म ज्योति जगे वो बहुत बढ़े। शास्त्रों में ये वर्णन है, ज्योति जगी और ऐसा लगा आसमान तक उठ गई। ये साक्षात्कार होंगे, हमारी ज्योति इतनी तेजस्वी हो जाएगी कि बहुत ऊंची लो उठती हुई दिखाई देंगी हमसे। तो अपने को बहुत अच्छी स्थिति में रखना है। देखो बाबा ने जिस चीज का इशारा दिया, कुछ बच्चों से ये शुरू हुआ है तो माना शुरू हुआ है, तो इसका समय समीप आ रहा है। वैसे भी हम जय जयकार के समय के समीप पहुंच रहे हैं, इसलिए सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। अब क्लास समाप्त करते हैं, टाइम हो रहा है भाई, थोड़ा सा योग कर लो, क्योंकि मुझे बोलने में तकलीफ होने लगी, थोड़ा बुखार था। ओम शांति।